पहला सैमुअल बाब 10। फिर सैमुअल ने कुप्पी लेकर साउल के सिर पर जैतून का तेल उंडेल दिया और उसे बोसा देकर कहा, रब ने आपको अपनी खास मिल्कियत पर रहनुमा मुकर्रर किया है। मेरे पास से चले जाने के बाद जब आप बिन्यामीन की सरहद के शहर जिलजख के करीब राहिल की कब्र के पास से गुजरेंगे तो आपकी मुलाकात दो आदमियों से होगी। वो आपसे कहेंगे, जो गधियां आप ढूंढने गए वो मिल गई हैं, और अब आपके बाप गधियों की नहीं बल्कि आपकी फिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किस तरह अपने बेटे का पता करूं। आप आगे जाकर तबूर के बलूत के दरख्त के पास पहुंचेंगे। वहां तीन आदमी आपसे मिलेंगे जो अल्लाह की इबादत करने के लिए बैतेल जा रहे हों। एक के पास तीन छोटी बकरियां, दूसरे के पास तीन रोटियां और तीसरे के पास मैं की मश्क होगी। वो आपको सलाम कहकर दो रोटियां देंगे, उनकी ये रोटियां कबूल करें। इसके बाद आप अल्लाह के जिबा जाएंगे जहां फिलिस्तीनों की चौकी है। शहर में दाखिल होते वक्त आपकी मुलाकात नबियों के एक जुलूस से होगी जो उस वक्त पहाड़ी के कुर्बानगाह से उतर रहा होगा। उनके आगे आगे सितार, दफ, बांसुरियां और सुरूद बजाने वाले चलेंगे और वो नबुवत की हालत में होंगे। रब का रूह आप पर भी नाजिल होगा और आप उनके साथ नबुवत करेंगे। उस वक्त आप फर्क शख्स में तब्दील हो जाएंगे। जब ये तमाम निशान वजूद में आएंगे तो वो कुछ करें जो आपके जहन में आ जाए, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होगा। फिर मेरे आगे जिलजाल चले जाएं, मैं भी आऊंगा और वहां भस्म होने वाली और सलामती की कुर्बानियां पेश करूंगा। लेकिन आपको 7 दिन मेरा इंतजार करना है, फिर मैं आकर आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। साउल रवाना होने के लिए सैमुअल के पास से मुड़ा तो अल्लाह ने उसका दिल तब्दील कर दिया। जिन निशानों की भी पेशगोई सैमुअल ने की थी वो उसी दिन पूरी हुई। जब साउल और उसका नौकर जिबा पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात मज़कूरा नबियों के जुलूस से हुई। अल्लाह का रूह साउल पर नाजिल हुआ और वो उनके दरमियान नबूवत करने लगा। कुछ लोग वहां थे जो बचपन से उससे वाकिफ थे। साउल को यूं नबियों के दरमियान नबूवत करते हुए देखकर वो आपस में कहने लगे, कैस के बेटे के साथ क्या हुआ? क्या साउल को भी नबियों में शुमार किया जाता है? एक मकामी आदमी ने जवाब दिया, कौन इनका बाप है? बाद में ये मुहावरा बन गया, क्या साउल को भी नबियों में शुमार किया जाता है? नबूवत करने के इख्तिताम पर साउल पहाड़ी पर चढ़ गया जहां कुर्बानगाह थी। जब साउल नौकर समेत वहां पहुंचा तो उसके चचा ने पूछा, आप कहां थे? साउल ने जवाब दिया, हम गुमशुदा गधियों को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन जब वो न मिले तो हम सैमुअल के पास गए। चचा बोला, अच्छा, उसने आपको क्या बताया? साउल ने जवाब दिया, खैर, उसने कहा कि गधियां मिल गई हैं, लेकिन जो कुछ सैमुअल ने बादशाह बनने के बारे में बताया था उसका जिक्र उसने न किया। कुछ देर के बाद सैमुअल ने अवाम को बुलाकर मिसफा में रब के हुजूर जमा किया। उसने कहा, रब इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लाया। मैंने तुम्हें मिस्रियों और उन तमाम सल्तनतों से बचाया जो तुम पर जुल्म कर रही हैं। लेकिन गो मैंने तुम्हें तुम्हारी तमाम मुसीबतों और तंगियों से छुटकारा दिया तो भी तुमने अपने खुदा को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि तुमने इसरार किया कि हम पर बादशाह मुकर्रर करो। अब अपने अपने कबीलों और खानदानों की तरतीब के मुताबिक रब के हुजूर खड़े हो जाओ। ये कहकर सैमुअल ने तमाम कबीलों को रब के हुजूर पेश किया। कुरा डाला गया तो बिन्यामीन के कबीले को चुना गया। फिर सैमुअल ने बिन्यामीन के कबीले के सारे खानदानों को रब के हुजूर पेश किया। मित्री के खानदान को चुना गया। यूं कुरा डालते डालते साउल बिन कैस को चुना गया। लेकिन जब साउल को ढूंढा गया तो वो गायब था। उन्होंने रब से दरियाफ्त किया, क्या साउल यहाँ पहुंच चुका है? रब ने जवाब दिया, वो सामान के बीच में छुप गया है। कुछ लोग दौड़कर उसे सामान में से निकालकर अवाम के पास ले आए। जब वो लोगों में खड़ा हुआ तो इतना लंबा था कि बाकी सब लोग सिर्फ उसके कंधों तक आते थे। शमूएल ने कहा, यह आदमी देखो जिसे रब ने चुन लिया है, अवाम में उस जैसा कोई नहीं है। तमाम लोग खुशी के मारे बादशाह जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। शमूएल ने बादशाह के हकूक तफसील से सुनाए। उसने सब कुछ किताब में लिख दिया और उसे रब के मकदस में महफूज रखा। फिर उसने अवाम को रुखसत कर दिया। साउल भी अपने घर चला गया जो जिबा में था। कुछ फौजी उसके साथ चले जिनके दिलों को अल्लाह ने छू दिया था, लेकिन ऐसे शरीर लोग भी थे जिन्होंने इसका मजाक उड़ाकर पूछा, भला ये किस तरह हमें बचा सकता है? वो उसे हकीर जानते थे और उसे तोहफे पेश करने के लिए भी तैयार न हुए। लेकिन साउल उनकी बातें नजरअंदाज करके खामोश ही रहा।